أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. اس کارکرم کے سبھی پیارے درشکوں، آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام. میں آپ کے سامنے ایک بار پھر احکام پر آدھارت کچھ مسئلوں کو لے کر آپ کے سامنے اپستھت ہوا ہوں. ہم نے اپنے پچھلے کارکرم سے جس چیز کے بارے میں بات چیت کو آرمبھ کیا تھا، وہ مسئلے تھے نماز جماعت سے سمبندھت. ہم نے اس پہلے والے کارکرم میں نماز جماعت کی اہمیت اور اس کے مہتو کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی تھیں. آج ہم اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. بس کیول انتر یہ ہوگا کہ آج ہم انشاءاللہ نماز جماعت کی شرطوں سے سمبندھت بات چیت آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز جماعت کا بہت مہتو بیان کیا گیا ہے. اس کے مہتو کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض روایتوں میں اس پرکار ملتا ہے کہ جماعت کی ایک رکعت فرادا یا اکیلے پڑھے جانے والی نماز کے 25 رکعتوں کے برابر ہے. لیکن جب ایک مسلمان جماعت کی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اپنی نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس نماز میں اس کے لیے انیواری یہ ہے کہ کچھ شرطوں کا دھیان رکھے، کچھ شرطوں کا پالن کرے. یعنی یہ وہ شرطیں ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ نماز کو جماعت سے پڑھے تو ان کا دھیان رکھنا انیواری ہے، اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کی جماعت کی نماز صحیح نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز، یعنی جو سب سے پہلی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جس سمے جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس سمے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جو معموم یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ امام کے آگے نہ کھڑے ہونے پائیں. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے برابر بھی نہ کھڑے ہوں، بلکہ تھوڑا سا کم سے کم امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہوں، تاکہ اس بات کا انتر رہے کون امام جماعت ہے اور کون معموم ہے، یہ پتہ رہے. یعنی جس سمے جماعت کی صفیں اور جماعت کی پنکتیاں کھڑی ہو رہی ہیں اس سمے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جو لوگ نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ امام جماعت یعنی وہ ویکتی جو نماز پڑھا رہا ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے رہیں. اور دوسری شرط جس سمے جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس استھان پر امام جماعت یعنی نماز پڑھانے والا ویکتی کھڑا ہے وہ استھان معمومین یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں سے اونچی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ مان لیجئے یہ امام جماعت کا استھان ہے اور یہ معمومین کا استھان ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر یہ اونچائی اور نیچا پن بہت کم ہو تو اس بات پر کوئی آپتی نہیں، اس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، مہتو نہیں دینا چاہیے. اور تیسری چیز، جس سمے جماعت کھڑی ہوئی ہے اور نماز جماعت سے ہونے والی ہے اس سمے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ معموم اور امام جماعت کے بیچ بہت ادھک فاصلہ نہ ہو، بہت ادھک دوری نہ ہو. اور اسی پرکار وہ صفیں جو ایک کے بعد ایک لگی ہوئی ہیں، وہ پنکتیاں نماز کی صفیں جو ایک کے بعد ایک لگی ہوئی ہیں، اس میں بھی اس بیاہ کا دھیان رکھا جائے کہ صفوں کے بیچ میں جو دوری ہے وہ بہت ادھک نہ ہونے پائے. یہ جماعت کی ایک شرط ہے، اس کا بات کا دھیان رکھا جانا آوشک ہے. اور ایک اور شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سمے جماعت کھڑی ہوئی ہے انسان نماز جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ معموم اور امام کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو جس کے کارن وش معموم امام کو نہ دیکھ سکے. या देखने में ऐसा ना हो कि अगर देखने में रुकावट नहीं बन रही तब भी कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, जैसे पर्दा, दीवार, इस प्रकार की चीज़ें इमाम और मामूम के बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। यानी इमाम और मामूम के बीच का जो संपर्क है वो डायरेक्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि अगर मामूमीन में मर्द और औरतें, महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, तो उस समय अगर महिलाओं और पुरुषों के बीच में पर्दा डाला जाता है तो इस पर्दे को रुकावट नहीं माना जाएगा और इससे जमात में कोई मुश्किल स्थिति पैदा नहीं होगी और उसकी जमात सही होगी। तो ये वो चीज़ें थीं जो नमाज की, जमात की नमाज में शर्त थी, उनका ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है जिस समय इंसान जमात की नमाज़ पढ़ रहा है वो ये है कि मामूम यही नमाज़ पढ़ने वाले और इमाम यही नमाज़ पढ़ाने वाले के बीच में संपर्क स्थापित रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहें, कांटेक्ट में रहें। ये कनेक्शन और ये संपर्क दो प्रकार से हो सकता है, या तो ये कनेक्शन और ये संपर्क डायरेक्ट है यानी बिना किसी माध्यम के है, इस प्रकार की एक इमाम खड़ा हुआ है उसके जस्ट पीछे मामूम है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई और माध्यम नहीं है, इनका जो रابطہ है, इनका जो कनेक्शन है डायरेक्ट है। तो अगर ऐसा है यानी माध्यम जो है, कोई चीज़ माध्यम नहीं बनी हुई है, ये कनेक्शन डायरेक्ट है, तो इमाम और मामूम के बीच में जो दूरी है वो एक कदम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस स्थान पर मामूम का सर सजदे के समय जाता है वो स्थान और इमाम के खड़े होने का स्थान जो है उसके बीच में एक कदम से ज़्यादा की दूरी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब मामूम और इमाम जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि एक कदम से ज़्यादा का फासला, एक कदम से ज़्यादा की दूरी नहीं होना चाहिए। एक दूसरा संपर्क जो होता है वो इस प्रकार हो सकता है कि कोई माध्यम बन रहा है, इनडायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, किसी माध्यम से दोनों में संपर्क हो रहा है। यानी क्या? ये जो माध्यम से कनेक्शन होता है, जैसे एक इंसान खड़ा हुआ है सफ में, आगे के लोगों के माध्यम से इमाम से वो कनेक्ट है, दाहिने और बाएं लोगों के माध्यम से इमाम के संपर्क में, तो एक ये कनेक्शन हुआ, एक ये रابطہ हुआ, एक ये संपर्क हुआ। तो अगर ये संपर्क है तो ये इसमें स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। अगर एक पहली स्थिति ये है कि इंसान जिस समय खड़ा हुआ है यानी दूसरों के माध्यम से उसका रابطہ है इमाम से, तो अगर वो खड़ा होने वाला व्यक्ति पहली पंक्ति में है, यानी इमाम खड़ा है उसके जस्ट पीछे पहली पंक्ति जो होती है उसमें किसी स्थान पर ये इंसान खड़ा हुआ है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अगर वो पहली पंक्ति में है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि कोई भी ऐसी रुकावट ना हो जिसके कारणवश वो इमाम को ना देख सके। यानी अगर इंसान पहली पंक्ति में खड़ा है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि कोई भी रुकावट ऐसी ना हो जो इमाम को देखने में रुकावट बन रही, यानी वो इमाम को देख सकता हो। इसी के से यहाँ पर एक मसला निकल के आता है, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम जो है वो मेहराब के अंदर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा होता है। मेहराब वो स्थान है जो मस्जिद वगैरह के अंदर थोड़ा अंदर बढ़ के एक दर टाइप का बनाया जाता है, उसके अंदर खड़ा होकर इमाम खड़ा हुआ है, पीछे मामूम खड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो इमाम के जस्ट पीछे खड़े हुए हैं और वो दूरियाँ जो जब पंक्ति बढ़ती जाती है दाएँ और बाएँ जो बढ़ रही है, तो उस स्थान तक जहाँ तक के लोग उस इमाम को देख रहे हैं उनकी नमाज़ सही होंगी। लेकिन अगर ये पंक्ति बढ़ते बढ़ते दीवार के उस स्थान तक पहुँच जाए जहाँ से वो एक व्यक्ति नमाज के पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है लेकिन इमाम को नहीं देख सकता है, तो इस व्यक्ति की नमाज जमात से सही नहीं होगी। लेकिन इसमें एक तो ये हो गया, यानी दीवार रुकावट बन गई इमाम को देखने में। लेकिन अगर ऐसा हो कि पंक्तियाँ बढ़ती 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 इतनी दूर तक चली गई हैं कि दूरी के कारण वो इमाम को नहीं देख पा रहा है, तो अगर कारण दूरी बन रही है इमाम के ना देखे जाने में, तो ऐसी स्थिति में उसकी नमाज जमात से सही होने में कोई आपत्ति नहीं है, उसकी नमाज जमात से सही होगी। दूसरी चीज़, यानी इसमें जो एक मसला तो यह हुआ कि इंसान पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है, दूसरा मसला कि इंसान पहली पंक्ति में नहीं है, बाद की पंक्तियों में खड़ा हुआ है। तो इसमें भी ध्यान रखे जाने वाली चीज़ ये है कि कोई ऐसी रुकावट उस व्यक्ति और उससे पहले वाली पंक्तियों के बीच में नहीं होना चाहिए जिसके कारणवश वो पहले पंक्तियों को न देख सके। यहीं से अब मसला निकल के सामने आएगा। अगर मान लीजिए किसी मस्जिद में नमाज़ हो रही है और ये नमाज़ होते होते पंक्तियाँ बढ़ते 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 इतनी दूर तक पहुँच जाए कि मस्जिद के द्वार के बाहर पहुँच जाए, मस्जिद के दरवाज़े के बाहर तक पहुँच जाए, तो वो लोग जो मस्जिद के दरवाज़े में खड़े हुए हैं और जो उनके पीछे हैं और वो दाहिने बाएं कुछ लोग जो आगे की पंक्तियों को देख रहे हैं, उनकी नमाज़ें सही होंगी। लेकिन वो लोग जो दीवारों की तरफ पहुंच गए हैं, यानी जो दरवाज़ा था उसके बगल में जो दीवारें थी उसकी तरफ पहुंच गए और जिसकी वजह से वो आगे की पंक्ति के लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति को भी नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो इधर उधर जो लोग खड़े हैं उनकी नमाज जमात से सही नहीं होगी। यहाँ पर एक आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा बदल के है। आयतुल्ला सिस्तानी कहते हैं कि अगर ये लोग जो दरवाज़े के बाहर और दीवारों के बगल में खड़े हुए हैं, सामने वाले को नहीं देख पा रहे हैं, अगर इनका संपर्क दाहिने और बाएं तरफ से होते हुए इमाम तक पहुंच रहा है तो उसकी नमाज जमा से सही होगी, देखा जाना शर्त नहीं है। ये आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा था। तो ये वो चीज़ें थीं जो नमाज में ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है, जिनके बारे में कि जिस समय इंसान जमात में खड़ा हो रहा उस समय किस प्रकार खड़ा हो, किस स्थिति में उसकी नमाज सही होगी। उसके बाद जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए आ गया, अब जमात वो पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है किसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्लाम ने तकरीबन इसके ऊपर बहुत महत्व दिया और कहा है कि जिस व्यक्ति के पीछे आप जाना चाहते हैं उसके बारे में पता हो कौन है, किस प्रकार का है आपका लीडर जो है, यहाँ तक कि वो इमाम जो आपकी नमाज के लिए थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन है। इसीलिए इमाम जमात की कुछ शर्तें इस्लाम ने बताई हैं। सबसे पहली शर्त इमाम जमात की, जो पहले सबसे पहली शर्त है, वो ये है कि वो बालिग हो, आक़िल हो यानी अक्लमंद हो। दूसरी शर्त यह है कि वो आदिल हो, अदालत रखता हो। अगर आपको याद हो तो हमने अपने पिछले किसी कार्यक्रम में अदालत के माना और अदालत का अर्थ आपके सामने बयान किया था, लेकिन यहाँ पर हम फिर बयान कर देते हैं। अदालत का अर्थ ये होता है कि इंसान अपने नफ्स में अपनी आत्मा के ऊपर इतना कंट्रोल कर ले कि जिसके कारण वह जो बड़े गुनाह ना करता हो और उसका कंट्रोल इतना हो जाए कि छोटे गुनाहों को बार बार वो ना करे। अगर व्यक्ति ऐसा है कि बड़े गुनाह ना करे और छोटे गुनाह को बार बार अंजाम ना दे तो वो आदिल कहलाएगा। और इमाम के लिए शर्त यह है कि बालिग और आकिल होने के साथ साथ वो अदालत भी रखता हो और आदिल भी हो। उसके बाद एक और शर्त जो इमाम के लिए है वो मर्द होना है, कि जब इंसान जमात के लिए खड़ा हो रहा है तो जो इमाम जमात है वो मर्द हो। यहाँ पर बास फुकहा का फतवा थोड़ा सा भिन्न है। वो कहते हैं कि मर्द होने की शर्त आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर जमात महिलाओं की है तो एक महिला इमाम जमात बन सकती है। हाँ, अगर जमात पुरुषों की है तो उनके लिए इमाम जमात का पुरुष होना आवश्यक है। उसके बाद एक शर्त जो आयतुल्ला सिस्तानी की तौज़ील मसल में आपको मिल जाएगा वो ये है कि जो इंसान इमाम जमात बन रहा है वो हलाल ज़्यादा हो, यानी वो सही तरीके से पैदा हुआ हो, जिसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप और हम सभी इस बारे में जानते हैं, उसका अर्थ अच्छी प्रकार समझते हैं। उसके बाद जो शर्त यह है कि वो जो इंसान नमाज जमात के लिए इमाम बन रहा है वो नमाज को सही तरीके से पढ़ना जानता हो। एक और शर्त जो है वो ये है कि जो इंसान इमाम जमात बन रहा है वो ऐसा व्यक्ति ना हो, यानी एहतियात वाजिब यह कि ऐसा व्यक्ति ना हो जो अपने मल और मूत्र यानी पेशाब और पखाने के ऊपर कंट्रोल ना कर सकता हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो पेशाब और पखाने पर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो एहतियात वाजिब यह है कि उसको इमाम जमात नहीं होना चाहिए। एक और शर्त जो इमाम जमात के लिए है वो ये है कि जो व्यक्ति इमाम जमात बन रहा है, नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो रहा, उसको कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग का मरज़ नहीं होना चाहिए। यह भी एहतियात वाजिब है, यानी एहतियात वाजिब यह है कि ऐसे व्यक्ति को इमाम जमात न बनाया जाए। और एक और बात, अंतिम शर्त जो ये भी एहतियात वाजिब है कि जो व्यक्ति नमाज जमात के लिए खड़ा हो रहा है वो किसी भी कारणवश नजिस वस्त्रों में नमाज न पढ़ता हो। तो ये वो चीज़ें थीं जो इमाम जमात से संबंधित थी, इमाम जमात की शर्तों से संबंधित थी। तो अगर हम आज के कार्यक्रम का सारांश आपके सामने बयान करना चाहें तो कुछ बातें होंगी। सबसे पहले हमने आपको बताया कि खुद जमात की क्या शर्तें हैं, जो हमने आपके आपके सामने तकरीबन 4 या 5 शर्तें आपके सामने बयान की। उसके बाद मसले बताए आपको कि किस स्थिति में कैसे इंसान को जमात पढ़ना चाहिए, उसके खड़े होने की स्थिति क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने आपके सामने इमाम जमात की शर्तों को आपके सामने बयान किया। ये इमाम जमात से संबंधित और भी मसले हमारे सामने हैं जो हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आप सभी को ईश्वर के हवाले करता हूँ। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।